कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। सारे तपस्वी भाई बहने आनंद ले रहे ना मधुबन भूमि का, और जो फैन चाहिए पंखा थोड़ा तेज करना है, जो भाई बहने पीछे बैठे कृपया आगे आ जाए, आगे पट की जगह खाली है। कल जो बहने बैठी थी आ जाओ आप आगे, अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। आज का जो स्वमान है वो है मैं फरिश्ता हूँ, और आज जस्ट एक सूचना दे रहे हैं, दो सूचना। एक तो 8 तारीख को जो बाबा की पहाड़ी थी जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करके आप उसके पहले आप घूमने चले जाएंगे, पहाड़ी पर नहीं बस ऐसा घूमने जाएंगे, और शाम को 6 से 7 आदरणीय राजू भाई जी की क्लास होगी जिसका टॉपिक है योग की गहन अनुभूति के लिए डबल लाइट स्थिति। ये राजू भाई जी की उस दिन की टॉपिक है, और खुशखबर तो पांडव भवन में आना यही खुशखबर है। लेकिन उसमें और एक आज ऐड कर रही है, बाबा का घर हमारी पालना करता है। तो खास गुलजार उपवन से आप सभी के लिए पीले कलर का खरबूज आया है और वो ब्रेक में मिलने वाला है 11:30 बजे डाइनिंग हॉल में, ठीक है। और उसके पहले हम सभी के बीच में बाबा का एक अनोखा फरिश्ता आया है, आप सभी पहचानते हैं, आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी। दीदी जी का स्वागत थोड़ा जोर की तालियों के साथ करें। आप मास्टर ज्ञान सूर्य है और इस ज्ञान सूर्य की किरणें सब सरोवर में फैलती है, चाहे वो मान सरोवर हो, ज्ञान सरोवर हो, या फिर पांडव भवन हो, या बाहर भी हो। तो ये मास्टर ज्ञान सूर्य ज्ञान की किरणें फैला रहा है और उन सिर्फ किरणें नहीं फैला रहा है, आप देखेंगे सात्विकता, पवित्रता, दिव्यता, शांति, अलौकिकता, इसकी एक मूर्त हो। आप ज्ञान के बहुत सुंदर राज को आप इस प्रकार से स्पष्ट करते हो कि सामने वाले के सामने वो बात एकदम जैसे लाइव, जैसे चैतन्य में वो खड़ी हो जाती है। जस्ट दीदी, मैं सिर्फ एक मिनट लेती हूँ। पिछले भट्टी में वो ग्रुप था जयपुर का और आदरणीय दीदी जी की क्लास थी, फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, और दीदी जी चले गए और फिर उसके बाद मेरे पास एक माता जी आए और कहा, दीदी आज आपको मालूम है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोला, सविता दीदी जब क्लास करा रहे थे ना, तो मुझे उनसे ही एक ऐसा फरिश्ते का रूप बाहर आया हुआ दिखाई दिया, और दीदी दिखाई नहीं दिए, बस फरिश्ता दिखाई दिया, और दीदी मुझे साक्षात्कार हो गया फरिश्ता का, और उस माता के आंखों से आंसू टपकने लगे। तो दीदी जी की ये विशेषता है कि वो जो भी टॉपिक उन्हें मिलता है, जैसे आज की टॉपिक है स्वमानधारी सो सम्मानधारी, इस टॉपिक को वो उसी प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से हम सभी के सामने रखेंगे। दीदी जी खास मान सरोवर और उसके साथ नीचे का जो है और ऊपर का, इन सब की सेवाओं का, विशेष ये जो लेक्चर्स होते हैं, इन सभी को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। अब बाबा के सच्चे सर्विसेबल राइट हैंड है और ऐसे आदरणीय सविता दीदी जी, डॉक्टर सविता दीदी जी हम सभी के सामने विशेष रूप से रखने जा रहे हैं। इस समय जो मुरली हुई थी बाबा की, अव्यक्त वाणी चली थी, स्वमानधारी सो सम्मानधारी। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा त्रिकालदर्शी हैं और हम बच्चों को भी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो बाबा ने हमें तीनों कालों की समझ दी और हमें अनेक स्मृतियां दिलाई कि हम कौन थे, कौन हैं अभी और भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो जिसे बाबा हम सो हम का मंत्र कहता है, तो वो मंत्र बाबा ने हमें स्पष्ट किया। तो हम ही देवी देवता थे, हम ही श्रेष्ठ आत्माएं थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे और अभी हम संगम युग पर ब्राह्मण कुलभूषण बने हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं और भविष्य में फिर से ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। तो ऐसे बाबा ने अनेक स्वमान हमारी जो स्मृतियां हैं हमें दिलाई हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे टाइटल बाबा ने बच्चों को दिए हैं ना, हम सब जानते हैं कौन कौन से टाइटल हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाबा ने उस मुरली में, संडे की मुरली में कहा था, पूरे स्वमान की माला है और वो माला को हमें रोज सिमरन करना है। तो स्वमान की माला को सिमरन कर सकते हैं अभी। कौन कौन से टाइटल दिए बाबा? कहते हैं ऐसे टाइटल दुनिया में कोई राजनेता है, कोई अभिनेता है, कोई महान आत्मा है, कोई धर्मात्मा है, किसी को भी ऐसे टाइटल हो नहीं सकते। या दुनिया में कोई VVIP है, हु इज हु में उनका नाम है, लेकिन शिव बाबा की डायरेक्टरी में कौन है? हम बच्चे हैं। तो हम वो हैं जिनका भगवान भी नाम सिमरन करता है, या जिनको भगवान भी नमस्ते करते हैं। तो फिर कौन कौन से टाइटल हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान है, पूर्वज आत्माएं हैं, विघ्न विनाशक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। हाँ जी, मास्टर नॉलेजफुल हैं। आज तो बाबा ने बोला ना, एक और बोला, मास्टर नॉलेजफुल और साथ साथ विघ्न विनाशक हैं। गणेश जी का यादगार बताया ना बाबा ने, दोनों हैं, विघ्न विनाशक और नॉलेजफुल। तो हम बच्चे भी नॉलेजफुल हैं, मास्टर नॉलेजफुल बनकर चलते हैं तो फिर स्वतः ही विघ्न विनाशक हो जाते हैं। और जी महावीर हैं, त्रिनेत्री हैं। बहुत सोचना पड़ रहा है, लो ये माला ही याद नहीं है तो सिमरन क्या करेंगे। शिव शक्ति कंबाइंड हो, हाँ, आधार मूरत हैं, उद्धार मूरत हैं, विश्व परिवर्तक हैं, विश्व सेवाधारी हैं, ब्राह्मण कुलभूषण, डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है अभी, और श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है जी, बाबा के राइट हैंड है, हाँ, राज ऋषि हैं, होली हंस हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान तो पहले ही बोला, फिर स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने वाली आत्माएं हैं, लाइट हाउस माइट हाउस है, विश्व के लिए लाइट हाउस माइट हाउस है ना, स्वदर्शन चक्रधारी, वो तो हर दूसरे दिन बाबा साकार मुरली में ये टाइटल हमको देता ही है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो ये और भी है, और भी याद करेंगे तो और भी टाइटल। तो ये पूरी माला है और बाबा कहता अमृत वेले रोज इस माला का सिमरन करो। तो जब इतनी श्रेष्ठ स्मृति होगी, बाबा ने सब हमें श्रेष्ठ स्मृतियां जो हमारे स्वमान है यानी जो हम हैं वो बाबा ने हमें दिलाई, लेकिन हम सुनकर खुश होते हैं कि हम ये हैं, लेकिन कई बार सचमुच दिल से उसको स्वीकार नहीं कर पाते या उस स्मृति स्वरूप में नहीं रहते। जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक राजा का छोटा बच्चा, माना शिशु अवस्था में ही उसको भेड़िए उठा के ले गए। अब उसको, उनको नहीं पता चला कि भेड़िए उठा के ले गए, और वो जो भेड़िया उठा के ले गया वो एक भेड़िया माँ थी, तो वो समझ नहीं पाई कि ये इंसान का बच्चा है या मेरा बच्चा है, तो उसने उसको अपना ही बच्चा समझ के उसको पाला, जैसे अपने बच्चे को पालते दूध पिलाते। तो वो बड़ा होता गया भेड़ियों में, अब वो भेड़ियों में बड़ा होने लगा तो वो भेड़ियों जैसा ही बनने लगा, क्योंकि वो ही देखता था, वो उसने अपने हाथ को भी पैर बना दिया, वैसे ही भेड़ियों जैसे चलने लगा, भेड़ियों जैसी जब बोलना शुरू किया तो भेड़ियों जैसी ही आवाज निकालना शुरू कर दिया, उसके नाखून बड़े बड़े हो गए, बाल बड़े बड़े हो गए, और पूरा मतलब जैसे कि कोई समझ नहीं सकता था कि ये इंसान का बच्चा है। तो ऐसे 4-5 साल हो गए, अब राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो ये भेड़ियों का झुंड टकरा गया, तो जो सारे भेड़िए थे वो तो भाग गए, क्योंकि भेड़िए तो बहुत तेज भागते हैं, पर ये तो इंसान भेड़िया था तो वो उतना तेज नहीं भाग पाया, तो पीछे रह गया। तो सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि उनको भी लगा ये कुछ अब नॉर्मल है, तो उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने कहा देखें क्या है। तो देखा तो ये तो, क्योंकि फेस तो इंसान का था ना, भेड़िए का तो नहीं था, तो समझ में आ रहे ये तो इंसान है, इंसान का कोई बच्चा है। फिर उसको उठाया और राजमहल में ले आए और उसको नहलाया धुलाया, उसके बाल काटे, नाखून काटे, उसकी साफ सफाई पूरी की। तो राजकुमार की कुछ निशानी थी, तो पता चला कि ये तो बचपन में जो राजकुमार खो गया था ये वही राजकुमार है, लेकिन अब तो राजकुमार नहीं है, अब क्या बन गया है, भेड़िया बन गया है। तो अब इसको इंसान कैसे बनाया जाए, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही था। तो फिर राजा ने घोषणा कराई कि जो इस भेड़िए को इंसान बना देगा उसको इतना पुरस्कार दिया जाएगा। तो कोई लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे, उनको लगा अगर नहीं कर पाए हम तो कहीं राजा सजा ना दे दे। पर एक ने हिम्मत रखी और कहा कि मेरे को जितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि कितना समय लगेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझे मेरा जितना समय चाहिए उतना देंगे तो मैं इनको भेड़िए से इंसान बनाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुमको जितना टाइम चाहिए। अब वो रोज उसके पीछे मेहनत करने लगा, इंसान कैसे बोलता है, इंसान कैसे खाता है, वो तो पूरा उसका ढांचा ही टेढ़ा हो गया था, उसको तो पहले सीधा करना वो भी एक चैलेंज था। तो उसके लिए एक वो लगाया गया एक्सरसाइज कराने वाला कि भाई इंसान सीधा खड़ा होता है, उसकी जो हड्डियां मुड़ गई हैं वो थोड़ा सीधी हो, इंसान जैसा वो सीधा खड़ा होने भी सीखे। तो माना सालों लग रहे थे, एक साल, दो साल, जितने साल में वो भेड़िया बना, 5 साल, उतने ही साल उसको सीधा खड़ा करने में भी लग गए। और जो वो समझने लगा कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य की भाषा बोलने लगा, तो राजा खुश हुआ कि ठीक है कुछ साल लग गए लेकिन कम से कम ये राजकुमार इंसान के रूप में तो आया, लेकिन अब ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो राजकुमार है। अब राजकुमार है तो उसको राजकुमार जैसा ही चाल चलन, रहन सहन उसकी शिक्षा देना आवश्यक है। फिर वो तो ठीक है, जैसे शिक्षक लगाए जाते हैं राजकुमारों के लिए, राजा ने लगाए। तो अब कहानी का भाव क्या है कि ऐसे नहीं है कि वो इंसान नहीं था, लेकिन भेड़ियों में चला गया, भेड़ियों के संग में चला गया, तो ये भी भूल गया कि मैं इंसान हूं। और ऐसे नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, है ना, तो वो ये भी भूल गया कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं तो राजकुमार हूं। तो उसको अपने असली रूप में लाने में, जो कि वो है ही, असली रूप में लाने में भी कितनी मेहनत लग रही है, जितनी मेहनत, जितना टाइम उसने भटकने में लिया उतना ही टाइम उसने वापस आने में लिया। तो ऐसे ही हमारे साथ है संगम युग पर। अब ऐसे नहीं है कि हम आत्मा नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि हम श्रेष्ठ आत्मा नहीं है, देवात्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, शांत स्वरूप आत्मा नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल रूप है। लेकिन द्वापर युग में जब हम भटक गए, यानी माया ले गई अपनी तरफ, रावण ले गया, तो हम क्या बन गए, क्या बन गए, रावण के जैसे ही बन गए ना, कहने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हम वही बन गए। और अब बाबा हमें आकर के फिर से स्मृति दिलाते हैं, तो इतना आसानी से हम फिर से अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आ पाते हैं, हमें उतना अभ्यास करना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, यानी स्मृति स्वरूप बनेंगे तब वो समर्थी हमारे अंदर आएगी। तो अगर हमने वो अटेंशन नहीं दिया जो बाबा ने कहा, सारे दिन का टाइम टेबल बनाओ, कहा ना संडे की मुरली में बाबा ने, जैसे अपने स्थूल कामों का टाइम टेबल आप रखते हो, ये करना है, ये करना है, आज ये काम निपटाना है, ऐसे ही मन का भी टाइम टेबल बनाओ कि मुझे सारे दिन में कौन से काम करते हुए कौन सा सामान रखना है। माताओं को कहा ना बाबा ने, खाना बनाते हो तो भी सामान में बनाओ, कौन से सामान में खाना बनाएंगे, मैं अन्नपूर्णा हूँ। अच्छा, और पवित्रता का स्वमान सबसे श्रेष्ठ स्वमान है खाना बनाते समय, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या पवित्र आत्मा हूँ। तो क्योंकि हमें वो वाइब्रेशंस, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, जो वाइब्रेशंस हमें खाने में डालने हैं वैसी स्मृति से वो खाने में वो शक्ति भर जाएगी। तो जो भी काम करें, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते थे, बाबा तो भी साधारण काम करते थे, बच्चों के साथ अनाज साफ करना है या जो भी, लेकिन बाबा की स्थिति साधारण नहीं होती थी, बाबा का स्वमान श्रेष्ठ होता था और इसीलिए कोई भी उस समय भी बाबा से मिल लेता था, साधारण काम करते हुए भी तो भी उनको वो अनुभूति बाबा से होती थी। तो इसीलिए बाबा के हर कर्म करते हुए हम वो स्मृति स्वरूप में रहें, वो नशा हमारा रहे, वो खुशी हमारी रहेगी, जिसको नारायणी नशा बाबा कहता है। तो दुनिया के नशों के लिए भी कहते हैं ना कि जब तक घुटेंगे नहीं तब तक चढ़ेगा नहीं, वो नशे भी घुटने पड़ते हैं, माना उसको वो पूरा जो भी चीज होती है उसको उसी तरह से विधि से पकाते हैं बनाते हैं। अभी जैसे भांग है उसको घोटते हैं तब जाकर के वो नशे वाली चीज बनती है। तो यहां भी जब तक हमने उसको बार 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 स्मृति में नहीं लाया है, अपना नहीं बनाया है, तब तक वो नशा हमें अनुभव होगा नहीं कि मैं ये हूं। बस सिर्फ सुनने तक, खुश होने तक होगा, सुनकर खुश हो गए फिर भूल गए, विस्मृति में आ गए वापस। दुनिया में भी कहते हैं कि जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान माना सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्म सम्मान अच्छा होता है, उनका आत्मविश्वास माना अच्छा होता है और वो जिम्मेवार होते हैं और अपने कार्यों में सफल होते हैं, तो जो भी लोग रिक्रूट करते हैं यानी लोगों को रखते हैं वो ये देखते हैं कि इसकी सेल्फ इमेज कैसी है ना। एक स्वमान हमारी सेल्फ इमेज भी है। इस पर भी जैसे उदाहरण आता है कि एक बार ऐसे भिखारी जो होते हैं वो भीख मांगते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी था, उसका नियम था कि जो भी स्टेशन पे पैसेंजर आते जाते थे वो बैठा होता था और लोग उसको देते थे। तो एक बिजनेसमैन जो है वो गाड़ी से उतरा और उसने उस भिखारी को देखा, तो उसने सोचा चलो कुछ देते हैं, तो उसने निकाला और फिर उसने देखा कि उसके उसमें किसी ने बिस्किट का पैकेट डाला था, तो उसने वो बिजनेसमैन था ना, तो उसकी बुद्धि ऐसी ही थी, तो उसने उसको पैसे डाले और बिस्किट का पैकेट उठा लिया। तो उसने कहा देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक बिजनेसमैन हो। अब जिस भी भाव से उसने बोला तो वो लेके वो बिस्किट का पैकेट, माना उसके कहने का मतलब था कि मैंने तुमको ये बिस्किट के पैकेट के पैसे दिए, तो वो देखता ही रह गया क्योंकि वो बोल के चला गया। पर उसने वो जो बोल दिया कि तुम भी एक बिजनेसमैन हो, तो उसके दिमाग में वो घूमने लगा बार बार। उसने कहा मैं तो एक भिखारी हूँ, उसने कैसे बोला मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जरूर उसने कुछ सोचा होगा देखा होगा तभी उसने बोला। अब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात घूमती है ना, जैसा सोचते हैं फिर वैसा ही हम करते हैं और बनते हैं। तो जब उसको, क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी किसी ने उसको इतने अच्छे शब्द कहे भी नहीं, तो उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि किसी ने मुझे बिजनेसमैन कहा। तो फिर उसका दिमाग चलने लगा कि क्यों ना मैं, क्योंकि उसने बीक से कुछ तो इकट्ठा कर ही रखा था, क्योंकि भिखारी भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ छोटा मोटा काम शुरू करूं करके देखूं, तो अगर हो गया तो हो सकता है मैं बिजनेसमैन बन जाऊं। तो उसने दिमाग चलाया चलाया और सचमुच उसने कोई छोटा काम शुरू किया, जैसे ये ठेले लगाते ना छोटे मोटे, और धीरे धीरे जो है उसका काम चलने भी लगा। थोड़ा शुरू में मुश्किल हुई लेकिन काम चलने लगा और ऐसे 4-5 साल में उसकी पोजीशन अच्छी हो गई, माना अच्छा कमाने लगा, उसने अपना एक किराए का घर ले लिया, माना अब ऐसा लगता नहीं था कि वो कोई भिखारी था। और ऐसे ही कोई एक शहर में सभा हुई तो सभा में वो भी गया, क्योंकि अब लोग उसको जानने लगे थे, काम करता था, तो उसको बुलाया गया, वो भी गया, तो उसने देखा कि वो जो बिजनेसमैन था जिसने उनको वो दिया था, ये पैसा दिया था और कहा था कि तुम बिजनेसमैन हो, वो भी उस सभा में है। तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा लो आज अचानक जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो वो गया और उसके पैर छुए जाकर के, तो वो देखने लगा, उसने कहा ये कौन है मेरा पैर छू रहा है, मैं तो उसको जानता ही नहीं। तो उसने कहा कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। उसने कहा आप मुझे कैसे जानते हो। उसने कहा कि आज से 5 साल पहले मैं रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था और आपने मुझे कुछ पैसे देकर कहा कि तुम एक बिजनेसमैन हो और आपकी उन शब्दों ने मुझे सचमुच बिजनेसमैन बना दिया और आज मैं खुद कमाता हूँ और ये सब आपकी ही बदौलत है। तो ये सुमान उसने दिया उसको और वो सुमान से उसमें वो सामर्थ्य आ गई कि जो उसने सोचा नहीं वो कर सकता है वो करने लगा। तो बाबा ने भी हमें जो सुमान देते हैं वो सुमान की स्मृति से हम में वो सामर्थ्य आ जाती है। बाबा कहते हैं वो सुमान हमारे कोई भी विघ्न हैं उनको विनाश कर सकते हैं, वो सुमान में इतनी शक्ति। इसलिए बाबा ने कहा ना आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ, फिर देखो कि कोई शक्ति आपका ऑर्डर ना माने, ऐसा हो सकता है वो शक्ति हाजिर होगी क्योंकि आप सीट पर हो। दुनिया में भी जो सीट पर होते हैं, बाबा ने कहा ना कि सीट पर हैं तो सीट वाले का ऑर्डर मानते, जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट की सीट पर है तो सब जो वो जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो सीट से उतर जाते हैं तो अगर हम भी सुमान की सीट पर हैं, बाबा ने हमें ये सीट दी है, तो अगर हम सुमान की सीट पर हैं तो ही माया हमारा ऑर्डर मानेगी या हमारी कर्मेंद्रियां भी तभी हमारा ऑर्डर मानेगी, नहीं तो माया ओपोजिशन पार्टी में आ जाएगी। नहीं तो ओपोजिशन पार्टी वाले सीट पर रहने नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह से इनको सीट से उतार दिया जाए। तो माया हमारी ओपोजिशन पार्टी में लगी ही रहती है कि ये सुमान की सीट पर ना रहे, है ना, क्योंकि भूल जाते हैं, माना क्या कौन भुलाता है, है ना। माया के ही अनेक रूप हैं जो हमें विस्मृति में ले आते हैं, तो माया हमें उतारने की कोशिश में रहती है। अगर हम सीट पर हैं तो फिर माया दासी के समान, बाबा कहता है आपका ऑर्डर मानेगी। और जो स्वमान में रहता है वो दूसरों को भी सम्मान देता है, माना भले ही वो नशा है खुशी है, लेकिन सोमान का मतलब ये नहीं अभिमान में आ जाना। एक होता है उल्टा नशा, तो सोमान देता है बाबा वो हमें देह अभिमान से मुक्त करने वाला है। सोमान अभिमान में लाने वाला नहीं है, उतना ही निमित और निर्माण होंगे, जितना सोमान में होंगे उतना ही निमित और निर्माण होंगे। तो वो स्वमान की स्थिति जिससे देह अभिमान समाप्त हो जाता है। देह अभिमान में अब कई प्रकार के अभिमान हैं, चाहे वो गुणों का अभिमान है, अपनी विशेषताओं का अभिमान है, अपनी बुद्धि का अभिमान है, सेवा का अभिमान है, नाम का अभिमान है, जो भी जिसकी पोस्ट पोजीशन होती है उसका भी अभिमान होता है। तो ये सारे अभिमान, और अभिमान की निशानी क्या होती है, अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। थोड़ा आवाज गूंज रही है ना, तो अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है, यानी वो किसी की भी छोटी बात को सहन नहीं कर सकता। तो हम वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो सम्मान वाले होते हैं वो स्वयं को सम्मान देने वाले हैं, और शिव बाबा से हमें इतना ऊंच सम्मान मिला है तो कोई हमारे साथ कैसा भी करता है तो हमारे अभिमान को ठेस नहीं पहुंचती, तो हमें वो फीलिंग नहीं आएगी न। ना, जैसे सूक्ष्म अभिमान कौन कौन से हैं, ज्ञान का अभिमान है मानो, तो अपने को ही राइट समझेंगे, दूसरे की राइट बात को भी सुनने को तैयार नहीं, बहस करने लग जाएंगे और उससे क्रोध में भी आ सकते हैं। अगर मेरी ही बात सही मनवानी है मुझे तो क्या करेंगे, गुस्से में भी आ जाएंगे। तो यहां पर दूसरा राइट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दूसरे के विचारों को हमें सम्मान देना ही नहीं देना, चलो उसके विचार मेरे से अलग हैं, है ना, इसलिए वो मेरे से सहमत नहीं है, तो हम उनके विचारों को भी सम्मान देते। बाबा ने हमें सिखाया है कि भले उसका नजरिया मेरे से अलग है, उनकी सोच मेरे से अलग है, लेकिन उनको भी हम स्वीकार करेंगे तो हम कभी भी उनसे लड़ाई में नहीं जाएंगे। फिर दूसरा सूक्ष्म अभिमान आ जाता है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, अभिमान है माना मैं गलत हो ही नहीं सकती, गलत हो नहीं सकती माना अगर मेरी गलती है और मैंने मान ली तो मैं, मेरे को कहीं कम ना समझा जाए, वही मेरा मान कहीं कम ना हो जाए। मान मांगने वाले होते हैं, देने वाले नहीं होते, अभिमान की निशानी है, तुम मुझे मान दो, अभी अभी मान दो, और अगर नहीं मिला तो इसीलिए ये अपनी चेकिंग है कि हम है ऐसे हैं, माना हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम भी इस स्थिति में आ जाते हैं, इसको क्यों सम्मान देते हैं, मेरे को क्यों नहीं देते, है ना, तुरंत दिखाई देता है ना तो तुरंत फीलिंग में आ जाते हैं, इसको तो बहुत पूछते हैं और मेरे को, मैं भी तो, मैं हमको इनसे कम करते हैं क्या, हम तो इनसे ज्यादा ही करते हैं, पर हम गुप्त रहते हैं, हमको हमारा किसी को पता ही नहीं चलता है, तो क्या हो गया, हम देने वाले नहीं, मुझे दे दो पहले। और सम्मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता, देना, उसकी दो ही विधि बाबा ने बताई, एक तो सम्मान में रहो, जो सम्मान में रहेगा उसको मान अपने आप मिलता है, और दूसरा देना है, हम दाता हैं, देवता बनने वाले हैं, मुझे देना है, बेगरपन में नहीं आना है, मान की भी जो इच्छा है वो भी रॉयल बेगरपन है, बाबा कहता है। फिर तीसरा, वो किसी की तारीफ नहीं सुन सकते, उनके सामने अगर किसी की तारीफ की जाए वो तुरंत उसकी बुराई निकाल के बताएंगे, आपको पता नहीं है आप तारीफ कर रहे हो, लेकिन वो कैसे हैं वो मुझे पता है, ईर्ष्या, है ना, इसको ईर्ष्या कहते हैं, कि हम किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते या किसी की सफलता हम नहीं देख सकते, क्योंकि अपने को कम नहीं समझते, अपने को सबसे श्रेष्ठ, ये अभिमान है ना कि मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। अब भाई हो सकता है किसी में कोई कमी हो, आपके अंदर वो कमी देखने का संस्कार है तो आप कमी देख के बता रहे हो, सामने वाले का गुण देखने का संस्कार है, अब वो व्यक्ति में गुण भी तो होगा ना, कमी ही थोड़ी होगी, तो वो गुण की तारीफ कर रहा है, उसने गुण देखा तो गुणों की प्रशंसा कर रहा है। फिर हमारे संबंध सबसे अलग अलग भी होते हैं, तो हरेक इंसान में गुण देखना, उसको ही हम सम्मान दे सकते हैं। अगर आप गुणग्राही नहीं हैं तो सम्मान देंगे, तो दूसरों को सम्मान देने वाले, जो स्वमान में रहने वाले हैं वो अभिमान से परे, देह अभिमान से परे सर्व को सम्मान देने वाले दाता होते हैं। कैसे, जैसे बाबा ने दिया, बाबा ने हमें सिखाया है सम्मान देना, कैसे शिव बाबा हमें सम्मान देते हैं, अपने से भी आगे रखते हैं, रोज सुनते हैं ना मुरली में, बाबा कहते हैं बाबा आया तो रोज बच्चों को मालिकम सलाम यानी रोज नमस्ते करता है, रोज परम धाम से आकर के बाबा बच्चों को खुद याद प्यार और नमस्ते देते हैं, बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, अपने से भी डबल पूछे बनाते हैं, कहां मंदिरों में जाकर कहते थे हम आपके चरणों के दास हैं, और बाबा ने क्या बना दिया, बाबा तो पैर भी नहीं छूने देते, क्या बना दिया, सिरताज बना दिया, हा? तो बाबा ने डबल ताजधारी बना दिया, हमको डबल पूछे बना दिया, तो और अपने को सेवाधारी रखा, शिव बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा ने बच्चों को सदा सम्मान दिया, शिव बाबा ने भी और ब्रह्मा बाबा ने भी। और ब्रह्मा बाबा, चलो शिव बाबा तो सतयुग त्रेता पूरे कल्प में नहीं आएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो पूरे कल्प में हम बच्चों के साथ आने वाले हैं। तो फिर सबको सम्मान दिया, इसीलिए पूरे कल्प सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी बने। तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी अगर बाबा के समान, हमें फॉलो फादर करना है, तो बाबा के समान अगर हम सबको सम्मान देते हैं तो पूरे कल्प हम अविनाशी सम्मान के अधिकारी बनते हैं। केवल संगम युग की बात नहीं, लेकिन पूरे कल्प यानी सतयुग त्रेता में किसके द्वारा, प्रजा के द्वारा, रॉयल फैमिली के द्वारा, और फिर द्वापर युग में भक्तों के द्वारा कितना सम्मान मिलता है। देवी देवताओं के रूप में जब पूजा होती है, आज भी देख रहे हैं, वो तो हम चैतन्य रूप में भी देख रहे हैं कि अपने देवी देवता की कितनी श्रद्धा से पूजा भक्ति करते हैं। तो आप सबकी हो रही है या कुछ मुख्य दादियों की और बड़े भाइयों की हो रही है, क्या बोलेंगे, सबकी पूजा हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है ना, तो देख रहे हैं ना कितना सम्मान करते हैं भक्त जो हैं। तो जड़ मूर्ति को भी इतना सम्मान मिलता है, तो निश्चित है कि हम इस समय चैतन्य रूप में इतने सम्मान के अधिकारी बने हैं, तब इतना वो सम्मान पूरे कल्प सर्वात्माओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सम्मान का स्नेह दिया। सुनते हैं ना बोर्डिंग में कैसे पालते थे बाबा बच्चों को, कैसे पालते थे। गुलजार दादी बहुत अच्छा अनुभव सुनाती थी, गुलजार दादी बोर्डिंग में रहे, किस किसने सुना है गुलजार दादी का अनुभव, हाँ कैसे सुनाते थे, बाबा हमें ठाकुरों की तरह पालते थे, माना शहजादे शहजादियों की तरह हमारी पालना हो, ऐसे नहीं ये क्या है तो बच्चे हैं, है ना। तो कभी भी बच्चों को भी साधारण नहीं समझा और हमेशा उस नजर से देखा कि ये होवनहार विश्व कल्याणकारी हैं, यही भविष्य में बाबा की सेवा के निमित्त बनने वाली आत्माएं। और दादियां तो, गुलजार दादी तो वो लौकिक स्कूल में गए ही नहीं, उन्होंने तो जो पढ़ा वो बोर्डिंग में ही पढ़ा। तो दादी कहती थी हमें तो विश्व का नक्शा भी नहीं मालूम था जब बाबा विश्व कल्याणकारी कहता था। और सचमुच जब समय आया सेवा का तो कितनी बार इस विश्व का चक्कर लगाया हमारी दादी जी ने, तो बना दिया ना बाबा ने विश्व कल्याणकारी, वरदान बन गए बाबा के वो शब्द उनके लिए। तो इतनी ऊंची नजर से बाबा ने बच्चों को भी देखा और उनकी परवरिश की। फिर जो युवावस्था वाले कुमार कुमारियां, उनको बाबा कहते थे ये असंभव को भी संभव करने वाले हैं, क्योंकि आज के जमाने में ब्रह्मचर्य में रहना असंभव मानते हैं, लेकिन उस आयु में जब लोग असंभव मानते हैं वो करके दिखा रहे हैं। तो ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाली आत्माएं हैं, इतने ऊंच सम्मान से बाबा ने उनको देखा। और जो प्रवृत्ति वाले थे, बुजुर्ग आयु वाले थे, उनको बाबा कहते थे ये मेरे हम जीन्स हैं, तो मेरे ही समान ये अनुभवी आत्माएं हैं। उस अनुभवी आत्मा के सम्मान से बाबा ने देखा। और बांधेली माताएं, उनकी तो बाबा कितनी तारीफ करते हैं कि ये तो योग में नंबर वन आत्माएं हैं, इनकी जैसी लगन तो जो रोज बाबा के घर में आते हैं उनकी भी नहीं है। और जो सम्मान देने वाले हैं, बाबा कहते हैं वो जो कोई ग्लानी भी करने वाला होगा ना, उसको भी ऐसे समझेंगे कि ये गायन कर रहे हैं। निंदा करने वाले को भी वो अपना मित्र समझेंगे, यही तो चैलेंज है, यही फेल होते हैं। समझ सकते निंदा करने वाले को मित्र, समझ तो सकते हैं लेकिन उस समय तो पूरा दुश्मन ही लगता है वो, हाँ ये कौन होते हैं मेरे बारे में ऐसे बोलने वाले, अभी हम इनको बताते हैं ये कौन है। क्या कहेंगे मित्र लगते हैं? अगर मित्र लगते हैं तो सचमुच हम स्वमान में हैं, और अगर दुश्मन लगते हैं तो और ग्लानी भी गायन कब लगेगी? अब ग्लानी करने वाला वही निंदा करने वाला। तो बाबा कहता है हमेशा समझो कि ये आगे जाकर द्वापर युग में भक्त बनकर मेरे गले में माला पहनाने वाले हैं। तो हमेशा उसको उस दृष्टि से जो बाबा ने हमें दिव्य दृष्टि दी है। तो सम्मान देने का मतलब ही क्या है? किसी भी आत्मा को हम सम्मान देंगे तो उसका मतलब क्या है? सम्मान देने का मतलब है उस आत्मा को स्नेह सहयोग देना। अगर हम किसी के गुण देखेंगे, जैसे मैंने कहा ना, तभी हम उसका सम्मान करेंगे, तो उसके प्रति हमारा स्नेह और सहयोग की भावना रहेगी। सदा हम उनको उमंग उत्साह से आगे बढ़ाएंगे जिसके प्रति हमारा सम्मान होगा। उनको हम खुशी देंगे जिस भी तरह से हम उनको खुशी, दुनिया में भी देखो आप जिसका नेचुरल सम्मान करते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है, सम्मान करने वालों के साथ। पर ये हमें हर एक आत्मा के साथ करना है, केवल कुछ लोगों के साथ नहीं। नॉर्मली हमारा बिहेवियर होता है कुछ लोगों के साथ हम सम्मान पूर्वक चलते हैं, जिनको हम समझते हैं कि हाँ सचमुच इनको हमें सम्मान देना है। तो किसी को हम दिल से सम्मान देते हैं, किसी को हम मजबूरी से सम्मान देते हैं, ऐसा भी होता है। अब उसकी पोस्ट पोजीशन ही ऐसी है तो देना ही पड़ेगा। एक होता है मजबूरी वाला और एक होता है दिल से हम समझते हैं कि नहीं ये तो उस सम्मान के पात्र हैं, इनको तो हमें देना ही है। पर बाबा कहते हैं चाहे कोई भी है, ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी आत्मा, चाहे वो अवगुण वाले हैं चाहे वो गुणवान हैं, चाहे वो माया जीत हैं चाहे वो माया के वश हैं, कोई भी आत्मा है जिसको बाबा हमेशा कहता है, लेकिन सभी के प्रति हमारी वही श्रेष्ठ भावना, वही शुभ भावना रहे। ऐसे नहीं ये तो ऐसा करते हैं तो इनको तो ऐसा ही मिलेगा ना। संकल्प क्या आता है, डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो देने लायक है उनको तो ठीक है हम दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं है अब इनकी कोई ना कोई कमी या गलती सामने आ गई तो अब इनको तो ऐसे ही मिलना चाहिए ना, इनके कर्म ही ऐसे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर हम सोच रहे हैं तो क्या हुआ, उस आत्मा के प्रति सम्मान हुआ या कोई गिर रहा है? हो सकता है गलती तो करते ही है ना, पुरुषार्थी भी हैं तो भी गलती करते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं, हमारे परिवार वाले भी हो सकते हैं, वो भी कई बार विघ्न रूप बनते हैं हमारे लिए, जो भी है आत्मा का ना, ज्ञानी है या अज्ञानी है। लेकिन अगर कोई अपने अलबेलेपन के कारण, कमजोरी के कारण नीचे गिरते भी हैं तो हम कौन हैं? गिरे हुए को गिराने वाले हैं क्या? हम गिरे हुओं को उठाने वाले हैं। बाबा ने हमें कौन सा कर्तव्य दिया है? फिर हम विश्व कल्याणकारी किसके लिए हैं? जिनका कल्याण हुआ है उनके तो कल्याण करने की बात ही नहीं है ना, किसका कल्याण करना है? ऐसी आत्माओं को ही तो आपको उठाना है, तो सहयोग देना है, उसके अवगुण दूर करने में हम सहयोगी बने, ये हमारा सम्मान है उसके प्रति। और चलो हम सीधी सीधी शिक्षा नहीं दे सकते, कई बार ऐसा होता है आप सीधा सीधा किसी को बता दोगे ना तो वो हमको कह देगा, तो आजकल सीधे सीधे शिक्षा नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं शिक्षा नहीं दो, रहम करो और क्षमा करो और शुभ भावना रखो, यही हमारी उसके लिए शिक्षा हो जाएगी। मानो कोई ऐसी गलती कर भी रहा है तो हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए? हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए? क्षमा करने का, रहम करने का और उसके प्रति शुभ भावना रखते हुए। तो ये हमें अटेंशन देना है, तब हम कहेंगे कि हम स्वमानधारी हैं। और बाबा कहता है कि ये स्वमान को इमर्ज करने में कितना टाइम लगता है। संडे की मुरली में बाबा ने बताया था, देखते हैं किसको याद आता है। जैसे स्विच ऑन करने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। अंधकार मिटने में 1 सेकंड लगता है। कितना भी गहरा अंधकार हो, आपने स्विच ऑन किया और लाइट हो जाती है। ऐसे बाबा कहता है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो, माना मैं कौन हूं। खाली आत्मा हूं ये बाबा ने नहीं बताया, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, तो उसकी स्मृति का स्विच ऑन करते ही ये देह भान के जो भी वैरायटी संस्कार आ जाते हैं, ये सब अंधकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो स्विच ऑन करना हमको आना चाहिए। और बाबा कहता है आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है, पावर हाउस कौन है, लाइट कहाँ से आ रही है, तो डायरेक्ट परमात्मा की लाइट हमको मिल रही है। तो हम सिर्फ वो अंधकार दूर नहीं करेंगे अपना, लेकिन दूसरों के लिए भी हम लाइट हाउस बन जाएंगे। और जो रिगार्ड की बात है, बाबा कहता है उसमें केवल ये दूसरों के रिगार्ड की बात नहीं, लेकिन स्वयं का रिगार्ड जो स्वमान के रूप में है, बाबा का रिगार्ड, बाबा की नॉलेज का रिगार्ड, ये रिगार्ड भी हमें रखना है। तो बाबा का रिगार्ड क्या है? बाबा तो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन हम बाबा का सम्मान कैसे रखते हैं? बाबा जो है जैसा है वैसा ही बाबा को समझकर याद करना, अनुभव करना, और बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना। जो बाबा ने हमें सर्व संबंध दिए हैं, माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, माता पिता के रूप में हम आज्ञाकारी हैं, बाबा के फॉलो फादर करने वाले हैं, कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे हम चलते हैं तो हम रिगार्ड रख रहे हैं। परिवार में भी आप माता पिता का रिगार्ड कैसे रखते हैं? वो जो कहते हैं वो हम करते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना। फिर टीचर का रिगार्ड है पढ़ाई में रेगुलर पंचुअल रहना। बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि कोई भी दिन हमारी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। और सद्गुरु का रिगार्ड क्या है? वफादार, नहीं, फरमान बरदार। यानी जो हमें सद्गुरु के सद्गति के लिए जो भी फरमान बाबा ने दिए, यानी जो भी नियम मर्यादाएं हमें दी हैं, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट चलना। फिर साजन के रूप से वफादार, साजन का संबंध है ना बाबा के साथ, तो वफादार माना एक बाबा के सिवाय कहीं भी मेरी बुद्धि न जाए। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग चलूं, है ना बाबा बताते हैं ना, तो देखूं भी तुम्ही को, बोलूं भी तुम्ही से, तो एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ही संसार है। तो अगर हम इस रीति से बाबा से संबंध रखते हैं, क्योंकि बाबा तो कहते हैं सब आत्मा मेरी सजनियां हैं, कोई बहनों की बात नहीं, लेकिन आत्मा रूप में फिर चाहे भाई भी हैं लेकिन पांडव भी हैं, सब कौन है? बाबा की सजनियां हैं। तो उस रूप में इतना बाबा से वफादार होकर के चलना, ये रिगार्ड रखना, उस संबंध से बाबा का रिगार्ड रखना है। दुनिया में भी हम देखते हैं कोई जरा भी बेवफाई करता है, परिवारों में रहते हैं ना, माना एक पत्नी का अगर किसी के साथ कुछ पता चल जाए, या पत्नी को पति के साथ, पति का किसी के साथ पता चल जाए, तो क्या होता है, क्या होता है, टिकता है वो रिश्ता, फिर टूटने लगता है ना, ना? तो किसी को भी बेवफाई दुनिया में भी पसंद नहीं होती कि मेरे अलावा किसी और के साथ क्यों रिलेशन है। तो शिव बाबा ने हमको यहां सिखाया कि एक बाबा के साथ ही, ऐसे नहीं हमको अपने रिश्ते नहीं निभाने हैं, लेकिन मुंह नहीं रखना है। जीवन का आधार बाबा है, दिल का स्नेह बाबा के साथ है, बाकी सबके लिए बाबा ने सेवा में रखा है। बाबा क्या कहता है, परिवार में तो रहेंगे ना, कोई थोड़ी घर गृहस्थ छोड़ देंगे, तो रहेंगे तो स्नेह भी है सबके साथ, संबंध भी है, लेकिन कैसे, सेवा का संबंध है। बाबा ने इन आत्माओं की सेवा के निमित्त मुझे रखा है, तो मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का कोई मोह नहीं होता, मेरापन नहीं होता है। कैसे रहते हो सब फैमिलीज में, कैसे रहते हो, ट्रस्टी होकर रहते हो या मेरा मेरा समझ के रहते हो, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, या जो भी मेरा मेरा, दुनिया में तो सब मेरा मेरा है, लेकिन बाबा ने क्या बना दिया, क्या बना दिया, तेरा तेरा, यानी न्यारा और प्यारा बना दिया। संबंधों में रहते हुए भी हम न्यारे और प्यारे हैं। तो ऐसे ही जो और संबंध हैं हमारे बाबा के, बाबा का ये रिगार्ड, लेकिन जो स्वयं का भी रिगार्ड है, स्वयं का रिगार्ड यानी हम सोमान में रहते हैं तो हमने स्वयं का रिगार्ड रखा जो बाबा ने स्मृति दिलाई। लेकिन कई बार लोग इसके ऑपोजिट जाते हैं, ऑपोजिट जाते हैं माना, अरे हम तो अभी ज्ञान में आए हैं, इतना लास्ट में ज्ञान में आए हैं, अब मैं क्या कर सकूंगी, कितना कर सकूंगी, और तीव्र पुरुषार्थ मेरे से तो होता ही नहीं। अगर ऐसे संकल्प आते हैं मानो, तो क्या कहेंगे, स्वयं का रिगार्ड रख रहे हैं, बाबा ने क्या बनाया, मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा के दिल तख्त नशीन, बाबा के नैनों के नूर, और इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल, और मैं दिल शिकस्त, मैं तो अपने से बिल्कुल निराश हूँ, अरे मेरे से तो होगा ही नहीं। हाँ फिर ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, पता नहीं पता नहीं, संशय, तो क्या कहेंगे, स्वयं का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, स्वयं का रिगार्ड नहीं। कभी भी हम अपने को कमजोर समझ ही नहीं सकते, क्योंकि किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर वो स्मृति है, सुमान है, तो समृद्धि आ ही जाएगी, पता ही है ना, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अब कमजोर कमजोर संकल्प करोगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे, तो इसीलिए स्वयं का भी डिसरिगार्ड नहीं करना है। जो बाबा ने हमें रिगार्ड दिया है उसी नजर से अपने को देखना है, जिस ऊंची नजर से भगवान ने हमें देखा उसी नजर से अपने आप को देखना है। ऐसे नहीं, मैं तो घर में रहने वाली माता हूं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। हमारी दादी जान की गुजार दादी पढ़े लिखे थे क्या, चलो प्रकाशमणि दादी तो फिर भी 10 क्लास पढ़ी थी, मम्मा भी 10 क्लास पढ़ी थी, बाकी तो जो भी माताएं आई सब उस जमाने में अनपढ़ी होती थी, तो कितनी ऊंची ऊंची सेवाएं करके चले गए, संस्था को पूरा संभाला है ना। तो लोग पूछते थे, हमको मालूम है, कई वीआई पूछते थे, दादी आपने कौन सी मैनेजमेंट की डिग्री की है, तो जो दुनिया वाले मैनेज नहीं कर सकते ऐसा मैनेज हमारी दादियों ने किया। तो कभी ऐसे कमजोर संकल्प लाना ही नहीं कभी। फिर बाबा की नॉलेज का रिगार्ड माना, बाबा ने जो ज्ञान दिया उसमें अटूट निश्चय, अटल निश्चय, भगवान सत्य ही, बाबा ने कहा ना सत्य ज्ञान बाबा ही देता है, दुनिया में और कोई भी सत्य ज्ञान दे नहीं सकता। तो फिर जैसे कई बार विनाश की बात को लेकर के कई लोगों को मन में आता है, बाबा कहता तो है पता नहीं विनाश तो होता नहीं, ये कब तक चलेगा, मानो हम थोड़ा भी संशय में आ गए उसको लेकर आ जाते हैं ना कभी कभी, तो जरा अंश मात्र भी संशय ना आए, क्योंकि शिव बाबा तो कल्याणकारी है ना, बाबा जो भी कहता है हम बच्चों के कल्याण के लिए कहता है, और बाबा ने कोई डेट तो कभी डिक्लेयर की नहीं, जो करते हैं वो दूसरे ही करते हैं, अनुमान लगा लगा के लोग डिक्लेयर करते रहते हैं, तो बाबा ने तो नहीं कहा ना, और बाबा तो हमेशा कहता है बाबा कभी डेट बताएगा नहीं, जो होना है वो अचानक होना है, समय कम है ये तो शुरू से ही बाबा ने कहा, तो बाबा तो बेहद में देखता है ना, बेहद ड्रामा के अनुसार तो समय कम ही है ना, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी, तो फिर समय तो बाबा तो कभी असत्य बोलेंगे ही नहीं ना। तो हम बाबा के ज्ञान को जिस तरह से बाबा हमें कहते हैं उस ज्ञान को उसी तरह से श्रीमत पर जिस जो श्रीमत है बाबा की उसको उसी निश्चय से हम फॉलो करते चले। उसमें बाबा कहते हैं जिज्ञासा के रूप में कोई प्रश्न पूछता है वो एक अलग बात है कि हम इसको जानना चाहते हैं, लेकिन संशय में आकर के प्रश्नचित हो जाते हैं तो वो रिगार्ड बाबा की नॉलेज का फिर हमने वो रिगार्ड नहीं रखा। तो स्वमान में रहना और स्वयं को भी सम्मान देना और सबको भी, कैसे सम्मान देना है, केवल सम्मान जिसको हम समझते हैं देना है उसको नहीं, लेकिन सभी आत्माओं को। और हरेक आत्मा का क्या सम्मान है वो बाबा ने हमें समझा रखा है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कोई काला कोयला भी हो, अभी बाबा की भाषा मैं नहीं बोल रही किसी को याद भी होगा, किसी को याद है बाबा ने ऐसे बोला था? एक ने हाथ उठाया, एक को याद है कि एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सामने वाला काला कोयला भी है तो भी आप डायमंड देखो। हमारी नजर कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कोयले से ही डायमंड बनता है। प्रकृति में भी यही नियम है कि जो कोयला होता है वो सालों तक धरती में पड़ा रहता है उसी में डायमंड बनता है। अब भले ही वो अपने वर्तमान संस्कारों में माया के परवश है, लेकिन असली तो क्या है, वो आत्मा है ना, अपने ओरिजिनल रूप में तो वो शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ आत्मा है ना। तो हमको वो दिव्य दृष्टि दी है ना भगवान ने, आप देखो ना उसका वो दिव्य रूप, हम नहीं देख पा रहे तो ये हमारी कमी है। तो इसीलिए कैसी भी आत्मा है मेरी दृष्टि उसके प्रति कैसी होनी चाहिए, तब हम सही अर्थों में स्वमानधारी सो सम्मानधारी हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी ने बहुत सुंदर तरीके से स्वमानधारी सो सम्मानधारी हम सभी को पक्का करवाया है, नहीं अच्छी तरह से ना? कैसे आपको लगा ये, कैसे बताएंगे आपको अच्छा लगा ये, कैसे बताएंगे क्लास अच्छा लगा, कैसे बताएंगे? बहुत सुंदर उदाहरण और बहुत सुंदर वो कहानी, चाहे वो बेड़िए की कहानी हो या फिर दीदी जी ने बताया भिखारी की कहानी, दिमाग में एकदम पक्की बैठ गई, नहीं है ना? एक खाली एक उस बिजनेसमैन ने कहा आप बिजनेसमैन हो और उसकी तो पूरी जिंदगी बदल गई। तो इसी प्रकार से आदरणीय दीदी जी ने हम सभी को बहुत सुंदर तरीके से स्वमान का अर्थ, स्वमान की परिभाषा, स्वमान का उपयोग और स्वमान से औरों को हम किस प्रकार से सम्मान देते ये बताया है। तो हम भी आज सारा दिन मैं फरिश्ता हूं इस स्वमान में रहेंगे। ओके, थैंक यू दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खास नीचे से दीदी ऊपर आए हैं हम सभी के लिए, नीचे भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता के बीच में भी आदरणीय दीदी जी यहाँ पधार कर समय पर पहुंचकर हम सभी को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कराया, इसलिए आदरणीय दीदी जी का सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसके बाद ब्रेक है पीले वाले तरबूज के लिए और फिर उसके बाद आदरणीय शिलू दीदी जी की बहुत सुंदर क्लास है, 12 बजे शुरू हो जाएगी।
इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन
के इस चमन की तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो,
तुम सृष्टि के श्रृंगार हो,
तुम बहार हो,
मधुबन के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के चमन की तुम बहार हो।
के अवतार